लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि श्रम के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति परिपूर्णता हासिल करे, परिवारों का भरण पोषण प्रतिष्ठापूर्ण ढंग से हो सके तथा समाज को मानवीय बनाया जा सके। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रोम के धर्माध्यक्ष के महागिरजा घर संत जॉन लैटरन में पोप लियो 14वें का ख्रिस्त त्याग प्रवचन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। पोप लियो 14वें ने रविवार 25 मई को रोम के धर्माध्यक्ष के सिंहासन या कैथेड्रा संत जॉन लैटरन महागिरजा घर में अपना पहला ख्रिस्त त्याग अर्पित करते हुए अपने नए धर्म प्रांत परिवार का अभिवादन किया। संत जॉन लैटरन महागिरजा घर की ओर जाने से पहले पोप लियो रोम के कैपिटोलिन हिल पर रुके, जो शहर के नागरिक और लोकतांत्रिक प्रशासन का मुख्यालय है। वहां शहर के महापौर रोबेर्टो गल्तियेरी ने उनका स्वागत किया। पोप ने महापौर और उपस्थित नागरिक अधिकारियों को उनके गर्मजोशी से स्वागत के लिए धन्यवाद दिया और आशा व्यक्त की कि रोम हमेशा मानवता एवं सभ्यता के उन मूल्यों के लिए विशिष्ट रहेगा जो सुसमाचार में अपना आधार पाते हैं। हमें दूसरों की बात सुननी चाहिए और सबसे बढ़कर ईश्वर की आवाज सुननी चाहिए। रोम के धर्माध्यक्ष के कैथेड्रल संत जॉन लैटरन महागिरजा घर में ख्रिस्त त्याग के दौरान पोप लियो 14वें के प्रवचन के केंद्र में यही विचार था। संत पापा ने कहा,
La Chiesa di Roma è erede di una grande storia.
रोम की कलीसिया एक महान इतिहास की विरासत है जो संत पेत्रुस, संत पौलुस और असंख्य शहीदों के साक्ष्य पर स्थापित है और इसकी एक विशेष प्रेरिताई है जिससे हम इस महागिरजा घर के झरोखे में अंकित पाते हैं। ओमनियम एक्लेसियरुम मातेर, सभी कलीसियाओं की माता। उन्होंने कहा, पोप फ्रांसिस ने हमें हमेशा कलीसिया के मातृत्व में आयाम पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित किया। उससे परिभाषित करने वाले करुणा, आत्म त्याग और सुनने की क्षमता जैसे गुणों पर विचार करने का आह्वान किया। उनके इन गुणों ने उन्हें न केवल दूसरों की मदद करने हेतु सक्षम बनाया बल्कि उनकी जरूरतों एवं अपेक्षाओं को उनके कहने से पहले ही उनके लिए उपलब्ध कराने में भी मदद की। हम आशा करते हैं कि उन गुणों का विकास हर जगह और यहाँ की धर्म प्रांत कलीसिया, विश्वासियों, पुरोहितों और सबसे पहले मुझ में भी व्याप्त हो। पाठों पर चिंतन करते हुए पोप लियो 14वें ने कहा, आज के पाठ हमें इन गुणों पर चिंतन करने में मदद करते हैं। प्रेरित चरित से लिया गया पाठ विशेष रूप से हमारे लिए प्रथम ख्रिस्त समुदाय के बारे जिक्र करता है जो सुसमाचार प्रचार के संबंध में खुले रूप में गैर ख्रिस्त समाज से आने वाली चुनौतियों की चर्चा करता है। यह कोई छोटी समस्या नहीं थी जो धैर्य एवं आपस में एक दूसरे को सुनने की मांग कर रही थी। अंताकिया समुदाय में जहां भाइयों को वार्ता के माध्यम से और यहां तक कि असहमति का भी सामना करते हुए सवालों को सुलझाना पड़ा, पौलुस और बरनबास यरूशलेम जाते हैं। वे खुद समस्या का समाधान नहीं करते बल्कि माता कलीसिया को एकता में देखना चाहते हैं, इसलिए वे विनम्रता से जाते हैं। वे यरूशलेम में पेत्रुस और अन्य प्रेरितों को पाते हैं जो उन्हें सुनने के लिए तैयार हैं। यह एक वार्ता की शुरुआत थी जो अंततः उन्हें सही निर्णय लेने में मदद करती है। नए ख्रिस्तों की कठिनाइयों को देखते हुए वे उनके ऊपर और दूसरे बोझों को नहीं लादने का निर्णय करते हैं बल्कि उन बातों पर जोर देते हैं जो जरूरी थी। इस भांति एक समस्या के रूप में दिखाई देने वाली बात सबों के लिए विचार मंथन और विकास के लिए एक अवसर बनता है। हम इसे यरूशलेम के भाइयों के शब्दों में पाते हैं जो अंताकिया के लिए अपने निर्णयों को प्रस्तुत करते। वे लिखते हैं, यह पौत्र आत्मा को और हमें उचित जान पड़ा दूसरे शब्दों में वे इस बात पर जोर देते हैं कि इस घटना में सबसे मुख्य बात ईश्वर की आवाज को सुनने की थी, जो हर बात को संभव बनाते हैं। इस भांति वे हमें इस बात की याद दिलाते हैं कि एकता का निर्माण मुख्यतः घुटनों में प्रार्थना के माध्यम से और परिवर्तन हेतु निरंतर विचारों के आदान प्रदान में होता है। केवल इसी भांति हम में से हर कोई पौत्र आत्मा की प्रेरणा से अब्बा पिता पुकार सकते हैं, और तब इसका परिणाम यह होता है कि हम एक दूसरे को भाई बहनों के रूप में सुनते और समझते हैं। सुसमाचार पाठ इस बात को सुदृढ़ करता है, यह हमारे लिए इस बात को सुनिश्चित करता है कि हम जीवन में निर्णय लेने के लिए अकेले नहीं हैं। पौत्र आत्मा हमें पोषित करते और हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। वे हमें शिक्षा देते और उन बातों की याद दिलाते हैं जिससे यीशु ने कहा है। सर्वप्रथम पौत्र आत्मा हमें प्रभु के वचनों को हमारे भीतर गहराई से अंकित करके सिखाते हैं, जैसा कि बाइबल में बतलाया गया है। अब वे पत्थर की पट्टियों पर नहीं बल्कि हमारे हृदयों में लिखे गए हैं। यह वरदान हमें बढ़ने और एक दूसरे के लिए मसीह का पत्र बनने में मदद करता है। स्वाभाविक रूप से जितना अधिक हम सुसमाचार द्वारा खुद को आश्वस्त एवं परिवर्तित होने देते हैं, अर्थात पौत्र आत्मा की शक्ति को हमारे दिल को शुद्ध करने, हमारे शब्दों को सीधा करने, हमारी इच्छाओं को ईमानदार एवं स्पष्ट बनाने और हमारे कार्यों को उदार बनाने की अनुमति देते हैं, तो हम उनके संदेश की घोषणा करने में उतने ही अधिक सक्षम होते हैं। यहाँ दूसरी क्रिया काम में आती है, हम स्मरण करते हैं, अर्थात हमने जो अनुभव किया है और जो सीखा है उस पर हम अपने हृदय में चिंतन करते हैं, ताकि उसका अर्थ पूरी तरह से समझ सकें और उसकी सुंदरता का आनंद ले सकें। इस संबंध में संत पापा ने कहा कि मैं रोमधम प्राण द्वारा इन वर्षों में अपनाई गई सुनने की चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया के बारे में सोचता हूँ। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो विभिन्न स्तरों पर की जा रही है, हमारे चारों ओर की दुनिया को सुनना, ताकि उनकी चुनौतियों का जवाब दिया जा सके, हमारे समुदायों के भीतर सुनना ताकि आवश्यकताओं को समझा जा सके, और सुसमाचार प्रचार एवं दान के लिए बुद्धिमानीपूर्ण एवं नबी के समान पहल का प्रस्ताव रखा जा सके। यह एक चुनौतीपूर्ण यात्रा रही है जिसका उद्देश्य एक समृद्ध एवं जटिल वास्तविकता को अपनाना है। फिर भी यह इस स्थानीय कलीसिया के इतिहास के योग्य है, जिसने बार बार दिखलाया है कि यह बड़ी सोच रखने में सक्षम है। साहसिक परियोजनाओं को शुरू करने एवं नई और चुनौतीपूर्ण परिदृश्यों का सामना करने से नहीं डरती। पोप लियो ने जयंती वर्ष में तीर्थयात्रियों का स्वागत करने के लिए धर्म प्रांत का आभार व्यक्त करते हुए कहा, यह उन महान प्रयासों एवं विभिन्न कार्यक्रमों से स्पष्ट है जो धर्म प्रांत ने वर्तमान जयंती के दौरान तीर्थयात्रियों के स्वागत और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया है। आप सभी को धन्यवाद। इन प्रयासों ने रोम शहर को आगंतुकों के लिए एक विस्तृत, खुला एवं स्वागत करने वाला घर बना दिया है, और सबसे बढ़कर यह गहरी आस्था का स्थान है जिसमें कुछ लोग बहुत दूर से यात्रा करके आते हैं। संत पापा ने धर्म प्रांत को अपना पूरा सहयोग देने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा, अपनी ओर से मैं इस चल रही महान प्रक्रिया में योगदान देने की अपनी दृढ़ इच्छा व्यक्त करना चाहूंगा, ताकि जितना संभव हो सके सभी की बात सुन सकूं, साथ मिलकर सीख सकूं, समझ सकूं और निर्णय ले सकूं। जैसा कि संत अगस्तीन कहते हैं, एक ख्रिस्त के रूप में आपके साथ और एक धर्मदक्ष के रूप में आपके लिए। अपनी नई जिम्मेदारी में सहयोग का आग्रह करते हुए पोप लियो ने कहा, मैं आपसे भी प्रार्थना एवं उदार कार्यों में मेरा साथ देने के लिए कहूंगा। संत लियो द ग्रेट के शब्दों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा, हमारी प्रेरिताई के कार्य में हम जो कुछ भी अच्छा करते हैं वह मसीह का काम है, हमारा अपना नहीं, क्योंकि हम उनके बिना कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हम उन पर गर्व करते हैं जिनसे हमारे काम की सारी प्रभावशीलता प्राप्त होती है। अंत में संत पापा ने कहा, मैं धन्य जॉन पॉल प्रथम के उन शब्दों को जोड़ना चाहूंगा जिनके प्रसन्नचित एवं शांत चेहरे के कारण उन्हें पहले ही मुस्कुराते हुए पोप का उपनाम मिला था। 23 सितंबर 1978 को अपने नए धर्म प्रांत परिवार का अभिवादन किया था। उन्होंने कहा, संत पियूस 10वें जब वेनिस में प्राधिधर्मदश के रूप में प्रवेश किए तो संत मार्क में कहा था, वेनिस के प्रिय वासियों, अगर मैं आपसे प्यार ना करूं तो मेरा क्या होगा। पोप लियो ने कहा, मैं आप रोम वासियों से भी कुछ ऐसा ही कहना चाहूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं केवल आपकी सेवा में आना चाहता हूं और अपनी अल्पयोग्यता को, जो थोड़ी सी मेरे पास है और जो मैं हूं, सबकी सेवा में लगाना चाहता हूं। मैं भी आपके प्रति अपना स्नेह व्यक्त करता हूं और अपनी यात्रा में आपके साथ अपने सुख दुख, संघर्ष एवं आशाओं को साझा करने की इच्छा व्यक्त करता हूं। मैं भी आपको जो थोड़ा बहुत मेरे पास है और जो मैं हूं, समर्पित करता हूं। उससे संत पेत्रुस एवं पौलुस तथा हमारे उन सभी भाई बहनों की मध्यस्थता में सौंपता हूं, जिनकी पवित्रता ने इस कलीसिया के इतिहास और इस शहर की सड़कों को रोशन किया है। कुमारी मरियम हमारे साथ रहें और हमारी मध्यस्थता करें।
La Vergine Maria ci accompagni e interceda per noi.
मेरे संग चल मसीहा, मेरे संग चल मसीहा, मेरे संग चल मसीहा, मेरे संग चल मसीहा। तूने चला था चेलों के संग एमोस के राहों पर,
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। वाटिकन के प्रेरितिक भवन की खिड़की से अपनी प्रथम स्वर्ग की रानी प्रार्थना संबोधन में संत पापा लियो 14वें ने विश्वासियों को याद दिलाया कि ईश्वर हमारा हाथ थामते हैं और हमें आमंत्रित करते हैं कि हम खुद को परेशान न होने दें, बल्कि विश्वास में आनंद के साथ चलें। संत पापा ने आभार व्यक्त करते हुए अपना संबोधन शुरू किया, कुछ ही दिन पहले मैंने आपके बीच अपनी प्रेरिताई शुरू किया और सबसे पहले मैं आपको उस स्नेह के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं जो आप मुझे दिखा रहे हैं। मैं आपसे अपनी प्रार्थनाओं और निकटता के साथ मेरा समर्थन करने के लिए कहता हूं। अपने धर्म शिक्षा में संत पापा ने माना कि प्रभु हमें जिस किसी काम के लिए भी बुलाते हैं, चाहे वह हमारी जीवन यात्रा हो या हमारी आस्था की यात्रा, कभी कभी हम खुद में असमर्थ महसूस करते हैं। हालांकि उन्होंने कहा, संत योहन का रविवार या सुसमाचार पाठ हमें बताता है कि हमें अपनी ताकत पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि प्रभु की दया पर निर्भर रहना चाहिए, जिन्होंने हमें चुना है, यह सुनिश्चित करते हुए कि पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करती है और हमें सब कुछ सिखाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए संत पापा ने विश्वासियों को याद दिलाया कि प्रभु चिंता और संकट के बीच भी आराम और शांति प्रदान करते हैं। प्रेरितों के लिए जो अपने गुरु की मृत्यु के पूर्व संध्या पर परेशान और व्यथित हैं, यह सोचकर कि वे अपने गुरु के कार्यों को कैसे जारी रख पाएंगे और ईश्वर के राज्य की गवाही दे पाएंगे। संत पापा लियो 14वें ने कहा, यीशु इस अद्भुत वादे के साथ पवित्र आत्मा के उपहार की घोषणा करते हैं, जो कोई मुझसे प्रेम करता है वह मेरा वचन मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम करेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। संत पापा ने कहा कि ईश्वर का हमारे अंदर वास करना पवित्र आत्मा का उपहार है, जो हमारा हाथ थामकर हमें अनुभव करने में सक्षम बनाते हैं। यहाँ तक कि हमारे दैनिक जीवन में भी ईश्वर की उपस्थिति और निकटता हमें उसका निवास स्थान बनाती है। संत पापा ने कहा, यह अच्छा है कि जब हम अपने आह्वान, हमें सौंपी गई वास्तविकताओं और लोगों, हमारे द्वारा निभाई गई प्रतिबद्धताओं और कलीसिया में हमारी सेवा को देखते हैं, तो हम में से प्रत्येक व्यक्ति आत्मविश्वास से कह सकता है, भले ही मैं कमजोर हूँ, लेकिन प्रभु मेरी मानवता से शर्मिंदा नहीं है। इसके विपरीत वे मेरे भीतर वास करने के लिए आते हैं, वे अपनी आत्मा में मेरे साथ चलते हैं, मुझे प्रबुद्ध करते हैं और मुझे दूसरों के लिए, समाज के लिए और दुनिया के लिए अपने प्रेम का साधन बनाते हैं। संत पापा ने कहा, आइए हम विश्वास के आनंद में चले, पवित्रता में, और आइए हम उसके प्रेम को हर जगह पहुंचाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करें। इसके बाद संत पापा लियो 14वें ने स्वर्ग की रानी प्रार्थना का पाठ किया। इसके उपरांत संत पापा ने कहा, धनिया कुंवारी मरिया की मध्यस्थता से चीनी कैथलिकों और हम सभी को सुसमाचार के मजबूत और हर्षित गवाह बनने की कृपा मिले, यहाँ तक कि परीक्षणों के बीच भी, ताकि हमेशा शांति और सद्भाव को बढ़ावा मिले। शनिवार को मनाए गए चीन में कलीसिया के लिए प्रार्थना दिवस को याद करते हुए संत पापा ने चीनी कैथलिकों और विश्वव्यापी कलीसिया के साथ उनके संवाद के लिए चिंता और स्नेह के संकेत के रूप में दुनिया भर में ईश्वर से की जाने वाली प्रार्थनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने आगे कहा, इन भावनाओं के साथ हमारी प्रार्थना युद्ध से पीड़ित सभी लोगों को गले लगाती है। हम उन लोगों के लिए साहस दृढ़ता का आह्वान करते हैं जो बातचीत और शांति की ईमानदारी से खोज में लगे हुए हैं। इसके बाद संत पापा ने ईश सेवक फादर स्टानिस्लाव स्ट्रेच को भी याद किया, जिन्हें शनिवार को पोलैंड के पोजनान शहर में धन्य घोषित किया गया। 24 मार्च को संत पापा फ्रांसिस के ऐतिहासिक विश्व पत्र लौदातो सी की 10वीं वर्षगांठ थी, जिसके बारे में संत पापा लियो ने कहा कि यह असाधारण रूप से लोकप्रिय रहा है, जिसने अनगणित पहलों को प्रेरित किया है और सभी को पृथ्वी और गरीबी की दोहरी पुकार को सुनना सिखाया है। संत पापा ने लौदातो सी आंदोलन और इस प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने वाले सभी लोगों का अभिवादन किया और उनका उत्साह बढ़ाया। और रविवार दोपहर को रोम के महागिरजाघर की यात्रा करते समय संत पापा लियो 14वें रोम के कैपिटोलियन हिल पर रुके, जो शहर के नागरिक और लोकतांत्रिक प्रशासन का मुख्यालय है, जहां उनका स्वागत महापौर रोबर्टो ने किया। अपने संक्षिप्त भाषण में संत पापा ने महापौर और उपस्थित नागरिक अधिकारियों को उनके गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए धन्यवाद देते हुए कहा, महापौर महोदय, मैं आपके स्वागत और शुभकामनाओं के लिए बहुत आभारी हूँ। रोम के धर्माध्यक्ष के रूप में अपनी नियुक्ति के अवसर पर मैं आपके साथ साथ नागर प्रशासन और सैन्य अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि मैंने आधिकारिक रूप से इस धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष के रूप में अपनी प्रेरिताई शुरू किया है, मैं इसके सभी सदस्यों की सेवा करने की गंभीर लेकिन भावुक जिम्मेदारी महसूस करता हूं, जिसमें सबसे पहले मेरे दिल में ईश्वर के लोगों का विश्वास और समाज की सामान्य भलाई है। इस उद्देश्य के लिए हम सभी अपने अपने संस्थागत क्षेत्र में सहयोगी हैं। चुनाव के तुरंत बाद मैंने संत पेत्रुस प्रांगण में एकत्रित भाइयों और बहनों को याद दिलाया कि मैं उनके साथ एक ख्रिस्तीय हूं और उनके लिए एक धर्माध्यक्ष हूं। एक विशेष तरीके से आज मैं यह कह सकता हूं कि आपके लिए और आपके साथ मैं रोमन हूं। महापौर महोदय, मैं आशा करता हूं कि रोम, जो अपनी ऐतिहासिक और कलात्मक विरासत की समृद्धि के लिए अद्वितीय है, हमेशा मानवता और सभ्यता के उन मूल्यों के लिए खड़ा रहेगा जो सुसमाचार से अपना जीवन सींचते हैं। इन भावनाओं के साथ मैं इस शहर और इसके सभी निवासियों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। और रविवार को संत जॉन लातेरन महागिरजाघर में पवित्र मिसा समारोह का अनुष्ठान करने के बाद संत पापा लियो 14वें ने संत मरिया मेजर महागिरजाघर का दौरा किया। वहां उन्होंने पोलिस चैपल में सालुस पोपोली रोमानी माता मरियम के प्रतीक के सामने प्रार्थना की। इसके बाद संत पापा फ्रांसिस की कब्र पर प्रार्थना करने के लिए कुछ क्षण रुके और संत जॉन लातेरन महागिरजाघर के बालकनी से बाहर इकट्ठे हुए श्रद्धालुओं का अभिवादन किया। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।